गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय। सप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्मों विष्णुपाद सुष्मद भक्ति प्रज्ञान के सर्वस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति ज्ञापन करता। तत्पश्चात उपस्थित त्रिदंडी पादगण वैष्णव वैष्णवीगण और सज्जन वृंद माताएं बहने, सप्रथम मैं यहाँ के व्यवस्थापक हनुमान नगर या हनुमान विकास यहाँ के क्षेत्र के सदस्य हैं जिन्होंने यहाँ पर हम लोगों के लिए व्यवस्था की है 7 दिन के लिए, मैं इनको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आप लोगों के लिए भी मेरा धन्यवाद है क्योंकि आप हरी कथा सुनने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और आ रहे हैं। यदि श्रोता नहीं है तब फिर वक्ता ही क्या कर सकता, इसलिए आप लोगों का भी अभिनंदन है। एक बात समझें कि राम और कृष्ण क्या अलग हैं या एक ही हैं? यदि कृष्ण ही राम है तो राम की कथा भी कृष्ण ही कथा है, ऐसा समझना चाहिए। राम कोई अलग है नहीं, नृसिंह जी अलग नहीं है। इसलिए श्रीमद्भागवत में प्रहलाद महाराज की, नृसिंह देव की, रामचंद्र, बरादेव, बामन देव, सब केशव धीता दशविधरो, ये केशव की ही गुणगाथाएं हैं, लीलाएं हैं। कृष्ण राम कृष्ण का यह मर्यादापूर्ण स्वरूप जो राम कितनी करुण रस से भरा पड़ा है, इसको सुन करके एक भावुक व्यक्ति न रहने पर भी वो रो देगा। इसलिए इसमें संदेह मत करना, ये राधा कृष्ण का ही लीला चरित्र है। हमने बहुत बार यहाँ पर गोविंद जी मंदिर, गोपीनाथ जी मंदिर में राधा कृष्ण की और महाप्रभु की लीलाओं का सरस वर्णन किया है। इसलिए प्रारंभ में ही इस बार कहा, हनुमान बगीचे में आए हैं वाटिका में, तो हनुमान जी को प्रिय लगने वाली राम की कथाएं इस बार वहां पर सुनाएंगे। फिर कभी आएंगे तो कृष्ण की लीलाएं, जयदेव जी के जो परमाराध्यतम कृष्ण हैं उनके संबंध में मैं बतलाऊंगा। आज एक दिन का समय मैं संक्षेप में इस कथा का समापन करूंगा राम की। एक बात और है, ज्ञान और तत्व की बात है। तत्व किसको कहते हैं? ये संसार क्या है जिसमें हम रह रहे हैं, वो तो इसको झूठा सपना बतला, और कोई कहते हैं ये है ही नहीं, कोई कहते है कि तुम नश्वर है ठीक है, नश्वर है। असल में तुलसीदास जी ने भी यही कहा, भागवत और गीता ने भी ऐसे ही कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जीवात्मा का स्वरूप कृष्ण का दास है, उसका सुंदर एक सलोना रूप है, उसके अंग प्रत्यंग बड़े सुंदर हैं, जो चिन्मय हैं, सहज सुख राशि, सहज जन्म से ही, सहज जन्म से सुख की राशि है ये, आनंद से परिपूर्ण है ये, किंतु आज वो जीव भगवान की सेवा को भूल करके इस जगत में घूम रहा है। कृष्ण ही परतत्व है, तत्वों की सीमा है, वे अद्वैय ज्ञान परतत्व है। वदन्ति तत्त्व विदस्तत्त्वं जज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दति। उनको चाहे ब्रह्म कहो अथवा उनको परमात्मा कहो या उनको भगवान कहो, स्वयं भगवान कहो, किसी किसी देश में उनको अल्लाह खुदा गॉड इत्यादि भी कहते हैं, किंतु उनमें पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं है जितनी की पूर्ण अभिव्यक्ति कृष्ण स्वरूप में है। कृष्ण के तत्व जानने से सबका तत्व जान जाएंगे। वो लोग भी भगवत ही हैं, भगवान ही हैं, किंतु राष्ट्र नहीं कर सकते। हनुमान जी अपना झूठा भगवान को नहीं देंगे, उनके कंधे पर नहीं चढ़ेंगे। इसलिए तत्वों में भी परम तत्व ये कृष्ण तत्व है, किंतु कृष्ण तत्व भी अधूरा है यदि राधा जी के साथ में नहीं है। शक्ति और शक्तिमान दोनों होना चाहिए। शक्ति शक्ति मतो रवेदः, ये वेदांत सूत्र कहते हैं। शक्ति नहीं है, सूरज नहीं है, तो उनमें ताप कहां से आएगा? यदि ताप नहीं है तो वह सूरज नहीं। जिसमें प्रकाश नहीं है, ताप नहीं है, जीवन शक्ति संचारण करने की शक्ति नहीं है, तो भला वो ईश्वर क्या है? इसलिए गिरिराज गोवर्धन को किसने उठाया? कृष्ण ने अथवा उनकी शक्ति ने? दिखने से मालूम पड़ता है कृष्ण ने नहीं उठाया, किंतु कृष्ण ने नहीं, बाई अंगुली पर उठाया। बाई अंगुली हाथ में भी बाएं हाथ से, उनकी शक्ति है बाएं पर। इसलिए सीता जी को, श्रीमती राधिका जी को समझिए, यह लक्ष्य कोटि रामा उमा ये सबके इंद्राणी सची इत्यादि के भी परमाराध्य हैं। इस रूप में उसको लीजिए। इसलिए शक्ति के बिना शक्तिमान कोई तत्व नहीं है, इसलिए शक्ति भी होनी चाहिए। जब तक शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं होती तो उनके हृदय में नहीं रहती है, और जब वही रूप धारण करती है, जब रूप धारण कर लेती है तो उसको क्या कहते हैं? राधा जी, सीता जी, और भी शक्तियां हैं भगवान। तो यह शक्ति तत्व, ये सब सृजन संहार इत्यादि जो कार्य होते हैं, ये सब शक्ति के द्वारा होता है। शक्तिमान केवल इच्छा करता है। हम जो जीव हैं, ये शक्ति हैं, प्रभु की शक्ति से प्रकाशित हैं। ये महात्मा जी को ऊपर आइए, ऊपर आ जाइए, ऊपर में बैठे, आइए ऊपर में बैठे, बैठ जाइए। प्रभु इच्छा करते हैं। ये श्रीमती राधिका जी जोगमाया के रूप में प्रभु से मिलन कराती हैं, सेवा की प्रेरणा देती हैं, शिक्षा देती हैं, और महामाया के रूप में जगत का ध्वंस इत्यादि बद्ध जीवों को कष्ट दे करके उन्हें आग पर तपाकर, आग माने त्रिता, और पुनः भगवान की सेवा में नियुक्त करना ही ये शक्तियों का काम है। इसलिए मूल शक्ति, स्वरूप शक्ति पराशक्ति कहलाती हैं, और उनकी छाया माया शक्ति है। विशेष रूप से समझिए, मूल शक्ति पराशक्ति श्रीमती राधिका जी हैं, सीता जी हैं, और उनकी छाया माया शक्ति कहलाती हैं, जो उमा हैं, दुर्गा काली इत्यादि कहलाती हैं। ये मूल नहीं, छाया शक्ति, किंतु अलग नहीं है, वो मूल पराशक्ति ही है। पराशक्ति का ये एक प्रकाश है अथवा छाया। ये सब समझ करके हम लोग कोटि कोटि जन्मों से भगवान को भूले हैं, इस जगत में आकर के भगवान का भजन करना चाहिए। विशेषतः तुलसीदास जी ने गरुड़ को काकभूषण जी के यहां भेज करके और उनको शिक्षा दी है। क्या शिक्षा दी? सूत्र सिद्धांत यह उर्गारी भजिए राम सब काज विषय। सब कामों को छोड़ करके भगवान का भजन करो, राम का भजन करो, कृष्ण का भजन करो। श्रुति सिद्धांत ये श्रुति वेद समस्त उपनिषद पुराण महाभारत वाल्मीकि रामायण इत्यादि सबका सार है। सब काज विषारी, सब कामों को भूल करके निरंतर भगवान का भजन करो। जैसे सुखदेव गोस्वामी है, नारद गोस्वामी है, व्यास जी है, इधर संत तुलसीदास हुए हैं, महाप्रभु के जितने परिकर हुए हैं। अच्छा, यदि तुम सब कामों को नहीं विषाद कर सकते हो तो घर का काम करते रहो, तभी भगवान का भजन करो। और इतना भी नहीं कर सकते तो माया का कष्ट भोगने के लिए तैयार रहो। तो सत्य सिद्धांत यह उर्गारी भजिए राम सब काज विषारी। कमट पीठ बरुजाम ही बारा, कछुए के खाल के ऊपर पीठ के ऊपर भले ही केस जम जाए नहीं होता। बांझ के लड़के को किसी ने मार डाला ये भी हम स्वीकार कर ले। बांझ को लड़का बेटा कहां से, यदि बांझ ही है तो उसके बेटे को किसी ने मार डाला ये भी हम स्वीकार कर ले। आकाश में फूल खिल जाए और जहां धरती नहीं खिल कहां से पुष्प, और इसको भी मैं मान लूंगा। अंधकार पर रवि ने सावे अंधकार, सूर्य को भी नष्ट कर दे ये भी मैं मान लूंगा। नभ आकाश में बहुत फूल खिल जाए, अथवा हिमति प्रकट अनलवर होई, बर्फ से आग पैदा हो जाए, इसको भी हम मान लेंगे। भाई आपकी सभी बातों को मान लेंगे। बार मथे बर्व हो ये घृत सिकताते बरुते बिन भरी भजन न भवतरिया यह सिद्धांत यते। बारी मथने से, पानी मथने से भले ही घी निकल आए, रास्ते की सुर्की अथवा बालू पीसने से भले ही उसमें से तेल सरसों जैसा तिल जैसा आ जाए ये भी स्वीकार करना। किंतु बिना भगवान के इस जगत में कोई सुखी रह सकता है ये कदापि नहीं हो सकता। इस चीज को गांठ बांध लो। इसलिए तुलसीदास जी ने अंत में सबसे एक प्रार्थना करके रामायण को बंद किया। क्या? काम ही नारी प्यारी जिम लोभ ही प्रिय जिमिदाम तिमि नरनाथ निरंतर प्रिय लागु मोहिराम। ये भगवान श्री रामचंद्र जी या उनका नाम हमको कैसे प्यारा हो। काम ही कामी व्यक्ति को जैसे कोई नारी प्यारी होती है, लोभी को जैसे दाम अर्थ प्यारा होता है, अर्थ के लिए प्राण दे देगा, ऐसे ही भगवान का नाम कृष्ण का नाम हमें प्यारा। तो इसके संबंध में यह है ज्ञान तत्व। किंतु ज्ञान से नहीं होगा। पानी पीने से प्यास जाती है ये ज्ञान तो है, किंतु पानी नहीं पीते तो प्यास नहीं जाएगी। प्यास कैसे जाएगी? एक छोटा सा बच्चा शिशु अभी एक वर्ष का नहीं जानता है कि पानी पीने से प्यास चली जाएगी। मुख सूख जाता है, मैया उसको पानी दे देती है, प्यास चली जाती है। इसलिए क्रियात्मक रूप है भक्ति, और ज्ञान भावात्मक है, केवल उसे पेट नहीं भरने को। इसलिए ज्ञान अपने आप आ जाएगा यदि भक्ति रहेगी तो। भक्ति के अधीन ज्ञान और विज्ञान है, भक्ति परम स्वतंत्र है। बस प्रभु मैं तुम्हारा हूं ये भक्ति। ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाएंगे। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा लिखा, शास्त्रों में सब। भगवान का भजन करेंगे संसार से विरक्ति और भगवान के चरण में अनुरक्ति नहीं आएगी, तत्व ज्ञान नहीं होगा ऐसा कदापि नहीं। जरूर होगा ही, यदि नहीं हो रहा है तो समझो भक्ति नहीं है, ये समझो। अब इसके बाद में हम अब कुछ अपने कथा के समापन पर आता हूँ। रामचंद्र जी कुछ लोगों की दृष्टि में बड़े निर्मोही हैं और निष्ठुर हैं। उनका जैसा क्रूअल हार्टेड विश्व ब्रह्मांड में कोई नहीं, लोगों की ऐसी धारणा है। सीता मैया ने क्या किया जिस उसको छोड़ दिया? अरे इंद्र और सब देवता लोग आए, उनके खुद पिताजी आए, और जो सर्वांतर्यामी है वो हवा पवन देव अग्नि देव, खुद अग्नि देव उनको यज्ञ भूमि से सीता को ला करके कहा जी ये परम पवित्र है। पवन देव ने अग्नि देव ने और दिशाओं ने दिक्पालों ने आकर के कहा सीता जी परम पवित्र है। क्या वो नहीं जानते थे? जानते तो थे। एक धोबी के कहने से सीता जी को आजीवन उन्होंने प्रत्याग कर दिया, और अयोध्या के लोगों को भी धिक्कार है, महर्षि वशिष्ठ को भी धिक्कार है जिन्होंने राम को परामर्श नहीं दिया। सीता मैया पवित्र हैं, यदि कोई उनको छू दिया तो अपवित्र हो गई? यह असंभव बात। किंतु राम बड़े निष्ठुर के धोबी के कहने से सदा के लिए ही परित्याग कर दिया, और लक्ष्मण के ऊपर में भाग दिया जैसे उसको बहुत दूर जंगल में गया। और चालाक कैसे, चतुर कैसे, कहना जैसे ये ऋषि मुनियों की को कपड़े देने और अलंकार देना चाहती थी सीता देवी, इसलिए उनसे कह देना जी अलंकार देने के लिए भेज रहे हैं। निष्ठुर भी और साथ साथ में कैसे चालाक चतुर भी। चालाक समझता है बुद्धिमान को नहीं कहे, चालाक एक दूसरा ही होता है, जैसे लोमड़ी चालाक होती है ना। तो उन्होंने भेजा, बेचारी गर्भवती थी अभी कुछ दिनों की ही, और उस स्थिति में एक धोबी के कहने के लिए, एक लाज रखने के लिए, समाज के लिए, समाज को खुश करने के लिए, मर्यादा रखने के लिए अपनी शक्ति पराशक्ति सीता जी को निर्दोष अवस्था में ही जंगल में भेज दिया, जीवन भर के लिए निर्वासित कर लिया। कोई शास्त्रीय का अनुमोदन नहीं करेगा, लेकिन कुछ है दृष्टिया, वो पीछे हम बतलाएंगे। राम कभी भी क्रूवेल नहीं हो सकता, उनकी भी एक सोच है। यदि ये सब चीजें नहीं होती तो सीता जी को कौन जानता? इतने में भी राम को छोड़ा? आज के स्त्रियां होती तो क्या करती, पल पल में उनको कितनी छोड़ करके नए 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 कर ले। किंतु इस अवस्था में भी राम ने नहीं छोड़ा। राम छोड़ सकते हैं, कृष्ण छोड़ सकते हैं, गोपियां नहीं छोड़ सकती, राम नहीं छोड़ती, सीता नहीं छोड़ सकती। राम ने छोड़ दिया, बिलबिलाने लगी, रोने लगी। वाल्मीकि जी आए, वो तो रामायण लिख रहे थे, कंप्लीट होने जा रहा था उनका, थोड़ा सा अध्याय, एक अध्याय का अंतिम ये कांड केवल थोड़ा सा बाकी था। लवकुश को उन्होंने पूरा सर्ग सुनाया। इतने में रामचंद्र जी 11,000 वर्ष राज्य करने के बाद में अंतिम वर्ष में ही सीता जी का प्रत्याग किया होगा। प्रत्याग करने के बाद में जंगल में वाल्मीकि के आश्रम में ये वन देवी के नाम से प्रसिद्ध थी सीता जी, कोई इनका सीता जी नाम नहीं जानता था। राम इनके पति हैं, इनको निर्वासित किया ये भी मना कर दिया था, कोई को पता नहीं था, केवल यही जानते थे वाल्मीकि ऋषि, वशिष्ठ भी जानते थे किंतु वो भीतर में रखते थे। तो वाल्मीकि जी ने उनको जन्म दिया, लवकुश नाम रखा, और फिर उनको सारी शिक्षाएं, वेद शास्त्र उपनिषद की सारी
वेदांत इत्यादि की सारी शिक्षाएं दी, यहाँ तक कि धनुर्वेद इत्यादि का भी विद्या दी और संगीत विद्या में निपुण कर दिया। मूर्छना और सब जो स्वर होते हैं, दक्षिणात्य उत्तरीय और पूर्वी पश्चिम तरह तरह के राग रागनिया सब में शिक्षा उनको दी। उसी समय में जीवन कैसे निर्वाह करते हैं, सीता जी के साथ में ये दोनों भाई बलकल के वस्त्र पहनते हैं। बलकल माने केले के छाल को, कोई आभूषण नहीं, कोई कपड़ा नहीं धारण करते, खड़ाऊ की खड़ाऊ लकड़ी की खड़ाऊ काष्ठ पादों का बस इसका व्यवहार करते हैं। उनके वन में जो फल मूल कंद होते हैं उसे ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद में जीवन निर्वाह करते हुए और ये बड़ी प्रखरता के साथ में विद्याओं का अध्ययन कर, जब रामचंद्र जी वशिष्ठ जी बोले मेरा मन नहीं लगता है इसलिए मैं यज्ञ करना चाहता हूं, उन्हें आप यज्ञ नहीं कर सकते, यज्ञ का अधिकारी नहीं है, क्यों, सीता जी को बुलाइए घर में, उनके साथ में यज्ञ कर सकते हैं, एक गृहस्थ व्यक्ति बिना अपनी पत्नी के नहीं कर सकते, ये तो संभव नहीं है, तो फिर दूसरी शादी कर लो, तो ये और असंभव है, नहीं मैं कर सकता, तो फिर कैसे हो, तो फिर भी कोई उपाय बतलाइए। तो उन्होंने कहा जैसे अच्छा स्वर्ण सीता निर्माण कर उसकी प्रतिष्ठा की जाए उनके साथ में, तो स्वर्ण की सीता बनाई गई और रामचंद्र जी ने उसमें प्राण संस्कार किए, स्थापना की वशिष्ठ जी ने, तो वो कैसी मूर्ति होगी, बोलने चालने वाली भी होगी, सब तरह का ज्ञान रखने वाली होते हैं, जैसे कि महापुरुषों के द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह हैं, जैसे गोविंद जी मथुरा से आए, मदन मोहन चल फिर करके आए, साक्षी गोपाल जी साक्षी देने के लिए हजारों मील चलते हैं, कहते हैं कि हमारे कान में छिद्र है, कान का आभूषण पहना दो इत्यादि कहते हैं, मुझे भूख लगी है, नमक भी तुम्हारे यहाँ नहीं जुटता है, नमक भी तो दे जरा, रोटी सूखी देती है देता है, वो भी गरम गरम रहती तो कोई बात नहीं, ऐसे ये भगवान लीला करते हैं, बातचीत करते हैं, तो मूर्ति भी ऐसे ही होगी सीता जी। एक दिन लौकुश को संवार करके और उनको भेजा, वाल्मीकि ने कहा जा रामचंद्र है गोमती के तट पर नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे हैं, वहां पर जाओ। गए दोपहर में उनकी सभा, पहले तो यज्ञ होता था सवेरे, दोपहर में सब लोग प्रसाद पा करके पुराण इत्यादि का श्रवण करते थे, उसी समय में लौकुश पहुंचे और उन्होंने वहां पर रामायण वाल्मीकि रामायण प्रथम कांड से सुनाना आरंभ किया, राम जी का जन्म, इसके बाद में सीता जी का विवाह, राम का वनवास, जब सुनाने लगे तो सभी लोग रोने लगे, राम भी रोने लगे, कौशल्या मैया और सभी लोग, बंदर भालू सभी लोग, कौशल्या और कैकई सुमित्रा इत्यादि रानियां कह रही हैं ये जो बच्चे हैं ये राम जैसे लगते हैं दोनों, राम जरा प्रौढ़ हो गया है और ये बच्चे अभी सुकुमार अभी किशोर हैं, कंठ क्या है सुरीला कैसा, कोकिल को भी मात करने वाला, ओ स्वर कैसे, मूर्छना और इत्यादि स्वरों से वो प्रकंपित होते रहते हैं, सबको मन से मुग्ध कर रहे हैं, यदि राम का बेटा होता तो ऐसा ही होता। सुनाते सुनाते सीता हरण इत्यादि सुनाया गया और प्रतिदिन लौट करके जाते और लौकुश ने जो जो हुआ उसको कहते। अंतिम दिन में लौकुश को कुछ विलंब हो गया, रात से पहुंचे, मैया उनके लिए प्रतीक्षा कर रही, जब दोनों बेटे आए तो अपने आए बाएं दाहिने बाएं बैठा लिया और बड़े प्यार से दोनों का मस्तक चुमते हुए और बोली बेटा आज बहुत विलंब हो गई तुम लोगों के आने में, क्यों, वो बोले जी मैया ओ रामचंद्र को ही आए हैं कौशल्या के राजा, तो वो यज्ञ कर रहे हैं, वहां पर एक सोने की मूर्ति बनी है ठीक तुम्हारे जैसे ही तुम बोलती हो चलती हो, वो चलती नहीं है बोलती नहीं है, बस यही अंतर है। और मैं उसको देखने में ही लग गया, मैं देख रहा चाहिए मेरी मैया यहां पर बैठी है या कौन है। और दूसरी बात, रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को या भरत को आदेश दिया, पूछो तो जिसके माता पिता का नाम क्या है, ये ब्रज लड़के सुंदर गाते हैं, बड़े होनहार लगते हैं, पूछो तो। और ऐसा करो जो सोने के थाल में मणि असरफियां ये सब भर करके रख दो और उसको दो, जय रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए हैं तुम्हारे ऊपर में, ये तुम्हारे लिए उपहार दिया। जब लक्ष्मण जी या भरत जी गए उनको देने के लिए, पूछा जी तुम्हारा नाम क्या है, लो तुम्हारे माता पिता का परिचय क्या, दोनों बोले मैंने समझा था कि आप लोग राजा हैं, गुणी हैं, सब विद्याओं को जानने वाले हैं, शास्त्र को जानने वाले हैं, ब्रह्मचारियों का नाम तब जान सकते हैं, गुरु का नाम जान सकते हैं, माता पिता का उनसे अब कोई संबंध नहीं रहता, इसलिए माता पिता का नाम आपने पूछा ये तो शास्त्र विरुद्ध है, पूछिए जी आपकी गुरु परंपरा क्या है, गुरु कौन है। आप लोग भी ऐसा ही करेंगे, उनका पिता का नाम, उनकी मैया का नाम, तुम्हारी स्त्री अभी है, महाराज जी की पत्नी है अभी, इनके बेटे बेटियां हैं, ये मत पूछो, पूछो क्या इनकी गुरु पर, उनसे ज्ञान की बातें, तत्व की बातें, भक्ति की बातें को सुनो। तो लक्ष्मण जी को जब इतना कहा तो लक्ष्मण जी शांत हो गए, कुछ बोल नहीं सके। फिर जब देना चाहा असरफियां तो उन्होंने कहा जी हमें इससे क्या हो सकता है, हम वनवासी हैं, हमारे गुरु जी के आश्रम में केले हैं, फल फूल आम अमरूद भरे पड़े हैं, उसे हम खा लेते हैं, वस्त्र हमें चाहिए नहीं, ये वस्त्र क्या मुझे जरूरत होगी, हम तो बलकल वस्त्र पहनते हैं, हमें लोटे की जरूरत नहीं कि अंजलि से गोमती नदी का पानी पी लेते हैं, हमें कुछ भी आवश्यकता नहीं, हम लोग पूर्ण संतुष्ट हैं। लक्ष्मण जी आवाज होकर थोड़ी देर के बाद में रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी को बुलाया, मुझे ऐसा मालूम होता है, ऐसा भान हो रहा है कि सीता जी तुम्हारे आश्रम में है, आपके आश्रम में है, और ये दोनों बालक कोई और नहीं सीता जी के ही पुत्र हैं, मैं चाहता हूं कल उसको बुलाइए यहां और सीता जी इसका परिचय दें कि मैं पवित्र हूं। अंतिम बात, जो अयोध्या वासियों की सारी शंकाएं मिट जाएं, मैं ये चाहता हूं, ये ठीक है? अच्छा दो मिनट।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम।
मेरे बाल बाल टोली में
कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में, कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में, कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में, कन्हैया मोहन कि तुम मां मन चुराते हो सुना
वाल्मीकि सीता जी को लेकर लवकुश को लेकर राम की सभा में प्रविष्ट किए। सारी अयोध्या वासी नगरी के लोग वशिष्ठ जी सभी माताएं हनुमान इत्यादि जामवंत सब ऋषि सब लोग भी वहां पर उपस्थित थे। सब लोग सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे जयराम अब क्या अगला
पद विक्षेप करते हैं। आगे आगे वशिष्ठ वाल्मीकि, उनके पीछे सीता जी, और उनके दोनों हाथों की अंगुलियों को पकड़ करके लव और कुश आ रहे हैं। सभी सभा सन्न थी। अब सबको ये मालूम हो गया ये दोनों राजकुमार राम के ही पुत्र हैं। सीता जी यहीं पर हैं, वाल्मीकि जी के आश्रम। राम बड़ी गंभीरता से उठे और बोले, हे देवी सीते, मैं जानता हूं कि तुम पवित्र हो, किंतु फिर भी मैं लोक लज्जा की दृष्टि से, लोक मर्यादा की दृष्टि से मैं जानना चाहता हूं कि तुम अपने मुख से अंतिम बार यह प्रमाण दो जो तुम सती शापी हो। उन्होंने कहा, सीता जी ने हाथ जोड़ करके राम को प्रणाम किया, फिर सास ससुर और सबको उन्होंने प्रणाम किया और बोली, अभी भी आपको मेरी शुद्धता पर अभी प्रमाण चाहिए और मेरा प्रमाण चाहिए, तो ठीक है, मैं अंतिम प्रमाण आपको दूंगी, सभा को भी देगी और अयोध्या वासी नगर वासियों को सबको दूंगी। यह करके उन्होंने ध्यान में पृथ्वी को पुकारा। पृथ्वी इनकी मैया है, पृथ्वी से ही निकली है जनकपुरी में, तो काजी है पृथ्वी माता, धरती माता। यदि मैंने राम को तन मन और वचन से कभी विषारा न हो तो आप दो भागों में बढ़ जाएं, फट जाएं और मैं आपके अंदर में प्रवेश कर जाऊं। यदि मैंने मन से ही राम का अतिरिक्त दूसरे किसी का स्पर्श न किया हूं कभी जीवन में, तो हे धरती देवी तुम अपनी गोद में मुझे बैठाओ। हे धरती देवी, यदि हमारे इच्छा के विपरीत ही दुष्ट असुर ने हमारा सर हमको स्पर्श किया तो आप धरती फट जाए और हम अपनी गोदी में बैठा, और ऐसा करते ही साथ ही साथ में पृथ्वी फट गई और उसके बीच से सोने के सिंहासन पर पृथ्वी देवी उपस्थित हुई और सीता जी को अपने अंक में बैठा दी। और एक क्षण के अंदर में ही न जाने क्या हो गया, पृथ्वी जुट गई और वो पाताल लोक में अपनी चली गई, जहां से आई थी अंत में वहीं चली गई। अब रामचंद्र जी हाहाकार कर उठे, रोने लगे, सारी सभा रोने लगी। कैकेयी और कौशल्या माता इत्यादि तो बहुत जोर से रोने लगी, हाय क्या हो गया। रामचंद्र जी धनुष लेकर के खड़े हो गए, बोले, जे धरित्री तू मेरी सास है, अभी सीता को नहीं लौटाती तो मैं अपने धनुष बाण से तुम्हें चकनाचूर कर दूंगा। जब इस प्रकार से क्रोधित हुए तो महर्षि वाल्मीकि जी आए, शांत शांत शांत, अभी मेरा वाल्मीकि रामायण पूरा नहीं हुआ तो अब हमारा वाल्मीकि रामायण पूरा होगा। इसको मैंने लव कुश को नहीं पढ़ाया था, आज ही अपने आंखों से इसने देखा है, बस यही तक है। जैसे वो कहते हैं ना, आदि तपोवनादिगमनम व्याहित्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायु मृणम सुग्रीव संभाषणम पश्चात
रावण कुंभ
आदि हननम
रामायण।
ये रामायण। तो आज मैंने संक्षेप में राम की रसमयी विरहमयी करुणामयी लीला कथाओं को सुनाया, जिसमें एक नास्तिक व्यक्ति का हृदय भी पिघल जाता है। इन कथाओं को सुनने से भगवान की भक्ति हृदय में आती है, ज्ञान से नहीं आता, ज्ञान कमजोर है। जैसे स्त्री स्त्री का रूप देख करके मोहित नहीं होती, पुरुष स्त्री का रूप देख करके मोहित हो जाएगा, या स्त्रियां पुरुष के रूप को देख करके मोहित हो सकती हैं। मोह नारी नारी के रूप है, भक्ति देवी और माया देवी। माया देवी को भक्ति भक्ति देवी को माया लुभा नहीं सकती, किंतु ज्ञान पुरुष है उसको ये माया देवी उसे लुभा लेगी। जितना भी ज्ञान हो, पहले दिन जो नारद की कथा सुनाई थी, ब्रह्मा जी की, शंकर जी का मोहिनी रूप इत्यादि देखो, किंतु भक्ति देवी कभी भी माया के ऊपर में रीझ नहीं सकती। जिसके हृदय में भक्ति का लेश भी है, विशेषकर कलयुग में नाम के प्रति जिनकी रुचि है, निष्ठा है, विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, प्रेम की तो बात ही क्या, तो भी माया देवी उसे स्पर्श नहीं करती। माया को जीतने के लिए ज्ञान से मत जीतने का प्रयास करो, ज्ञान को माया मोह एकदम मुग्ध कर देगी। भक्ति का लेश भी रहेगा, माया उसको तनिक भी आकर्षण नहीं कर सकती, इसलिए भक्ति के ऊपर में चलो। और वो भी कलयुग में केवल नाम आधार है, और हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में नाम के बिना कोई गति नहीं है। वाल्मीकि इत्यादि को देखो, ज्ञान के साथ साथ में उनको भक्ति हो, इसलिए नाम का आश्रय करें, सदाचार से रहें, कदाचार को दूर रखें और भगवान का स्मरण करें। जहां भी रहो, घर में बाहर में रहो, कोई आपत्ति नहीं, गृहस्थ आश्रम में हो या जहां भी रहने के स्थान में, भगवान का भजन करते हुए रहो। त्यागी हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो भी, त्यागी माने सर्वस्व त्यागी, अपनी प्रतिष्ठा को भी त्याग करने वाला, केवल घर बार त्यागने से नहीं, तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए आप लोग भगवान का नाम करेंगे बहुत सरल सहज युग में। कलयुग का जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, विविध स्वास्थ्य महामंत्र का
जय जय श्री राधे।